بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل قدر حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نسبت سے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ضرورت ہے کہ ہم ان عائد ہونے والی ذمہ داریوں کا ادراک اور احساس رکھتے ہوئے اس کی ان کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. یہ ایک بہت اونچا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. میں ایک مثال دوں گا. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مظاہر المسان پور، ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک صاحب ایک اور سرکاری عہدے دار کو لے کر حضرت کی ملاقات کے لیے لائے، اور آنے والے صاحب نے ان کا تعارف کراتے ہوئے حضرت سے عرض کیا کہ یہ ضلع مظفر نگر کے کلکٹر ہیں جو حضرت کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ان کلکٹر صاحب نے حضرت سے درخواست کی ہے کہ کوئی نصیحت فرمائیے. حضرت نے بہت مختصر نصیحت فرمائی کہ بھائی، اس عہدے اور منصب کی نسبت سے آپ کو جو سہولتیں دی گئی ہیں، ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا اور جو اختیارات دیے گئے ہیں ان اختیارات کو استعمال کرنا، اور اس عہدے اور منصب کی نسبت سے جو ذمہ داریاں آپ پر لاگو کی گئی ہے ان کی ادائیگی میں غفلت برتنا، یہ اچھی بات نہیں. یہاں کل تین چیزیں ہیں، اسی کو پوری کرنے بات. عہدہ اور جو منصب ہوا کرتا ہے، تو اس عہدے اور منصب کے اندر جس کو بھی وہ عہدہ حوالے کیا جاتا ہے، چاہے وہ وزارت عظمیٰ کا ہو یا صدارت کا ہو یا اور کوئی عہدہ ہو، اس عہدے میں تین چیزیں ہوا کرتی ہیں. اصل تو عہدہ اور منصب نام ہے کچھ ذمہ داریوں کے مجموعے کا. کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جتنی ذمہ داریاں بڑی ہیں اونچی ہیں، اسی مناسبت سے وہ عہدہ بھی اونچا اور بڑا سمجھا جاتا ہے. جس آدمی کو ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے تجویز کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، گویا یوں کہا جاتا ہے کہ اس عہدے پر اس کا تقرر ہوا. یہ عہدہ کوئی خوش ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑا بوجھ ہے जो साहेब मनसब के ऊपर लादा जाता है। इन जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए ज़रूरत होती है दो चीज़ों की। कुछ इख्तियारात भी दिए जाने चाहिए और कुछ सहूलतें भी दी जानी चाहिए। अगर किसी को ओहदा और मनसब तो दिया जाए, वो जिम्मेदारियां जो हैं ओहदे वाली वो उसके हवाले की जाएं, लेकिन साथ में उसको सहूलतें फैसिलिटीज जिसको कहते हैं वो और इख्तियारात यानि पावर्स न दिए जाएं, तो उसका नतीजा ये होगा कि उस ओहदे से मुतालिक जो जिम्मेदारियां उसकी हैं वो उसको कमा हक़ अदा नहीं कर सकेगा। एक कंपनी का किसी को अगर डायरेक्टर बना जाए, मैनेजिंग डायरेक्टर, उस कंपनी को चलाने की उसको जिम्मेदारी, तो अब मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाली गई। ये तो है असल उसका काम और यही उसको करना है, लेकिन ये आदमी ये काम कर नहीं सकता जब तक कि उसको दो और चीज़ें न दी जाएं, और वो हैं इख्तियारात, पावर्स। पर उस कंपनी में जितने भी मुलाजिम रखे जाएंगे, उन मुलाजमीन को मुकर्रर कर उनके तकर्रुरी का या उनको उस जगह पर रखने का, वहाँ से हटाने का, उनकी तनख्वाह के बढ़ाने का घटाने का, उनको छुट्टी रुख्सत देने न देने का, सारे पावर्स उसी को होते हैं। इसलिए कि अगर ये पावर्स उसके पास ना हो तो उसके नीचे जिन लोगों को रखा गया है कोई भी उसकी बात मानेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, हमारा क्या बिगाड़ेगा, ये कुछ कहेगा तो कोई उसकी बात पर अमल नहीं करेगा। तो ये पावर्स गोया इसीलिए दिए जाते हैं कि वो अपने इस फर्ज मनसबी को, जो जिम्मेदारियाँ उसको दी गई है, उसको कमा हक़ अदा कर सके। साथ ही साथ इन पावर्स और इख्तियारात के साथ साथ फैसिलिटी और सहूलतें भी दी जाती हैं। उसको मकान दिया जाएगा, उसको फ़ोन किया जाएगा, उसको और भी बहुत कुछ, एक दफ्तर, उस दफ्तर में दौरे हाजिर के अतबार से किसी कंपनी को चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब उसके हवाले की जाएगी, ताकि उसके ज़रिए से वो अपने फ़र्ज मनसबी को कमा हक़ अदा कर सके। ये तीन चीज़ें हुई। अब इन तीन चीज़ों में अगर देखा जाए तो हकीकत में तो असल चीज़ तो वो जिम्मेदारियां हैं जो उसके हवाले की गई है, जिनको उसको अंजाम देना है, लेकिन चूंकि वो इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह कमा हक़ अंजाम दे नहीं सकता जब तक कि बाकी दो चीज़ें, इख्तियारात यानि पावर्स और सहूलतें यानि फैसिलिटी, उसको न दी जाए। अब अगर वही मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो उन इख्तियारात और फैसिलिटी को तो इस्तेमाल करता है, उनसे तो बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाता है, लेकिन जो जिम्मेदारियां उसके हवाले की गई हैं उनकी अदायगी में कोताही करता है, आप ही बतलाइए कि वो कंपनी के जो मालिकान हैं वो कब तक उसकी इस रविश और अंदाज को बर्दाश्त करेंगे। कुछ मुद्दत तक तो उसको तंबीह करेंगे, भाई आपको तो ये काम करना है, आपको ये सब सहूलतें इसीलिए दी गई थी, ये इख्तियारात इसीलिए दिए गए थे कि आप अपने काम को अच्छी तरह अंजाम दे सकें, आप अब इन सहूलतों से अपना ऑर्डर चला रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, गाड़ी में इधर से उधर जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं सफ़र का, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं करते, तो कुछ मोहलत तो दी जाएगी, उस मोहलत के अंदर भी वो अगर अपने आप को ठीक और दुरुस्त न कर लें तो फिर उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। बस अल्लाह तबरक ताला ने अहले इल्म होने की निस्बत से हम पर कुछ जिम्मेदारियाँ डाली हैं और उन्हीं जिम्मेदारियों की अदायगी हम अच्छी तरह कर सकें, इसलिए अल्लाह तबरक ताला ने हमें बहुत सारी फजीलतें भी अता फरमाई। आलिम दीन होने की हैसियत से जो हमारा मकाम है वो कुरान और हदीस के अंदर वाज़ह किया गया है। अब हम एक आलिम हैं, इस नाते से लोगों के ऊपर अपना रौब जमाते रहें, हुक्म चलाते रहें, और अपनी जो जिम्मेदारी है, अपना काम है, वो करते न करें तो ये मामला अल्लाह ताला ज़्यादा मुद्दत तक चला सकेंगे, चलाएंगे नहीं, बल्कि इस ओहदे से हमें गोया हटा दिया जाएगा, गोया माजूर किया जाएगा। यही گویا ہر ذمہ داری کا حال ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث اور جانشین قرار دیا, اور یہ ایسا اونچا مقام ہے کہ اس دنیا کے اندر مذہب اور ملت کے اعتبار سے کوئی اور اس کا اس سے اونچا مقام قرار نہیں دیا جا سکتا. تو اب اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ وہی ہیں جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کی گئی تھی. فرض منصبی وہی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو انجام دینے کے لیے, جن مقاصد کو برلانے کے لیے اور جن وظائف نبوت کو ادا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا, وہی کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف بری کے بعد علماء کو انجام دینے ہیں. ان میں ایک تو قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم ہے, جو یہ سلسلہ ان مکاتب کی شکل میں مدارس کے اندر بھی جاری ہے, ناظرہ حفظ تجوید و قرآت کی شکل میں قرآن اور سنت کے علوم اور معارف سے لوگوں کو واقف کرنا, تعلیم کتاب و حکمت جس کو تعبیر کیا گیا قرآن کے اندر, تزکیہ یعنی لوگوں کے اخلاق کے بگاڑ کو درست کرنا, عقائد اور اعمال کے بگاڑ کو درست کرنے کی طرف توجہ کرنا, یہ بھی بڑا علماء کرام کی ذمہ داری ہے. ظاہر ہے کہ یہ سارے کام کوئی عالم اسی وقت انجام دے سکتا ہے جبکہ وہ بھائی بگاڑ کو آپ درست کرنا وہی کر سکتا ہے جو خود بھی اپنے آپ کو پہلے اس طرح تزکیہ کروا کر ٹھیک کر چکا ہو اور دوسروں کے بگاڑ کو گویا ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر, احکام خداوندی کی تبلیغ اور حلال و حرام کی گویا احکامات سے لوگوں کو واقف کرنے کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا. یہ سارے کام اہل علم کو انجام دینے ہیں, اور ان کاموں کو انجام دینے کے لیے طریقہ وہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار کیا, اور آپ کی دنیا سے تشریف بری کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو انداز اختیار کیا اسی انداز اور روش پر ہمیں اپنے آپ کو چلانا ہے. اس وقت ہماری سب سے بڑی ویسے بھی جس بیماری کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے وہ یہی ہے, دنیا کی محبت, مال کی محبت اور جاہ, عہدے اور منصب کی محبت, حب مال اور حب جاہ, یہ ایسی خطرناک چیزیں ہیں جس کے متعلق ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ کوئی ایسا بکریوں کا غلہ اور ریوڑ ہو جس کا چرواہا نہ ہو, یعنی اس کی بچا حفاظت کرنے والا, نگرانی کرنے والا موجود نہیں, ایسے بکریوں کے ریوڑ میں ایسے غلے کے اندر اگر ایک خونخوار بھیڑیا چھوڑ دیا جائے تو اس بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا ہے جتنا آدمی کے دین کو حب مال اور حب جاہ سے نقصان پہنچتا ہے. اس وقت ہمارے طبقۂ علماء کے اندر جو کمزوریاں آئی ہیں ان کمزوریوں میں یہ سر فہرست ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکابر اور اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں. ہمارے بزرگوں کو بھی گویا دنیا کا لالچ حکمرانوں کی طرف سے دیا جاتا تھا, لیکن وہ حضرات ذرا برابر بھی اس کی طرف توجہ اور التفات نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ایسا مستغنی بنایا تھا, یہ گویا استغنا قرآن کی علوم کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے, سلطان سنجر جس کی حکومت بہت بڑی تھی, وسیع تھی, ایک مرتبہ اس نے अपनी हुकूमत का पूरा एक सूबा, पूरा एक प्रोविंस जिसका नाम था नीमरोज, उसको बाकायदा जागीर के तौर पर कताए जैसे होते हैं जागीर दी जाती है। पुराने ज़माने में बादशाह और नवाब जो हैं अपनी हुकूमत का कोई बस कोई गांव, कोई शहर, कोई इलाका किसी को दे देते थे, उसकी आमदनी का वो मालिक होता था, जहाँ चाहे इस्तेमाल करें। तो सुल्तान संजर ने उनका हुकूमत का एक पूरा सूबा था जिसका नाम था निमरोज। हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह से जिनको हम जानते हैं, उनकी खिदमत में पेश किया। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसके जिस ख़त पर ये यानी जिस तहरीर के ख़त के अंदर वो तहरीर भेजी थी, इसी के पुष्ट पर दो शेर उन्होंने लिख कर के भेजे। जांगा के याफ्तम ये तू चतरे संजरी रुखे बक्तम सियाहबाद गर दर दिलम मुवद हवसे मुल्क संजरम जांगा के याफ्तम खबर दे मुल्क नीम शब मन मुल्क नीम रोज बयखर बयक जौ नमी खरम के तू चतरे संजरी रुखे बक्तम सियाहबाद। बादशाह लोग ज़माने में जब दरबार में बैठते थे तो उनके तख्त के ऊपर साया डालने के लिए एक साहिबान हुआ करता था, वो काले रंग का होता था। तो कहा सुल्तान संजर के उस काले रंग के साहिबान की तरह मेरा नसीबा भी काला हो जाए। गर दर दिलम भुवन हवसे मुल्क संजरम, अगर मेरे दिल में संजर बादशाह के मुल्क की जर्रा बराबर भी ख्वाहिश हो। जागा के याफ्तम खबर दे मुल्क नीम शब, जब से मुझे आधी रात के मुल्क का पता चला है, मिड नाइट वाले मुल्क का मुझे पता चला है हुकूमत का, मन मुल्क नीम रोज बयक जब नमी खरम। ये नीम रोज है तो उस इलाके का नाम, लेकिन फारसी का लफ्ज है, उसका तर्जमा होता है मिड डे। कि मैं गोया निमरोज के की सल्तनत को एक जौ के बदले में भी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। यानी जब से अल्लाह ताला के सामने रात को उठ कर के राजो नियाज वाली दौलत मुझे हासिल हुई है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इस्तिग़ना वाली कैफियत हजरत शाह गुलाम अली साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खलीफा और पूरे हिंदुस्तान क्या ये रूसी रियासतें और इराक और शाम वगैरह से भी बड़े बड़े उलमा उनकी खिदमत के अंदर आते थे अपनी इस्लाह के लिए। तो वो उनका हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो है तारीख़ दावत और अज़ीमत में लिखा है कि 500 ज़ाकिरीन का मजमा तो मुस्तकिल उनकी खानकाह के अंदर रहता था और रोज़ाना आने जाने वाले दूसरे मेहमानों की तादाद अलग। तो ये टोंक के जो नवाब थे मीर खान, उनके अकीदतमंद थे, उन्होंने एक मरतबा जो है चाहा कि कोई जागीर उनकी खिदमत में पेश करें। तो उसके जवाब में उन्होंने फरमाया कि माँ आबरूए फ़क्र कनात नमी बने बरें बा मीर खां बुगो के रोज़ी मुकद्दर अस, कि हम अपने फ़क्र और कनात की इज्जत आबरू को डुबोना नहीं चाहते, मीर खान से कह दो कि रोज़ी तो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। तो ये हजरात जिस इस्तिग़ना के साथ अपने इन खिदमात को अंजाम देते थे, हजरत मिर्ज़ा मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब जंजानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब जो हमारे तमाम अकाबिर के शेख हैं, सैयदुत्ताइफ़ा इसीलिए उनको कहा जाता है, उनके शेख थे हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब जंजानवी रहमतुल्लाह अलैह। एक मरतबा एक बहुत रियाजत किया हुआ साधु उनके पास आया, उस साधु ने बाकायदा दूर से हिमालय की चोटी से एक नूर का निकलता हुआ ये देखा, उसी के निशान लेकर के पहुंचा उनकी हिम्मत में, उनके पास रहा। और जब जाने लगा तो वो हजरत मियाँ जी को कहता है कि मियाँ जी तुम्हारे पास धन की यानी दौलत की कमी मालूम होती है, हमारी जो है हमारी इसमें वो ये पड़ी हुई है कि कीमिया का नुस्खा वो ले लो। तो मियाँ जी रहमतुल्लाह ने जवाब में कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। उसने फिर कहा कि ले लो, आपने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। उसने फिर कहा तो आपने ढेला उठा करके दीवार के ऊपर मारा, वो पूरी दीवार सोने की। तो वो साधु देख कर के कहता है हाँ आपको ज़रूरत नहीं है। तो हकीकत तो ये है कि जिस इस्तिग़ना के साथ हमारे इन अकाबिर ने दीन की खिदमात को अंजाम दी है, इस दौर के अंदर ज़रूरत है कि हम भी वही तरीक़ा अपनाएं। आज अवाम जब देखेंगे कि ये ख़वास उलमा वो भी माल के साथ इसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह हम करते हैं, ओहदा और मनसब के वो भी इसी तरह ख्वाहिशमंद है जिस तरह हम हैं। अवाम जब ये मंजर देखते हैं तो उनके कुलूब के अंदर उलमा की जो वक़ात होनी चाहिए वो ख़त्म हो जाती है और उनकी ज़ात से जो फ़ायदा होना चाहिए वो बाकी नहीं रहता। इसलिए ये चीज़ जो है अल्लाह वालों की खिदमत में रहने से हासिल होती है, इस्तिग़ना वाली कैफियत। अल्लाह तबारक व तआला के साथ जिस नौ का ताल्लुक अहले इल्म को पैदा करना चाहिए, अल्लाह की मखसूस इबादत, इबादत का अहतमाम, ज़िक्रुल्लाह का अहतमाम, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इबादत का जो हाल था, हजरत सहाबा जो अहतमाम करते थे, हमारे असलाफ़ किराम के यहाँ जो ये सिलसिले जारी थे, इन्हीं तरीक़ों को अपने बुज़ुर्गों अपने मशाइख की सरपरस्ती में इख्तियार करके आदमी अपने कल्ब का ताल्लुक अल्लाह तआला के साथ कायम करे। ये मामूलात जो हैं यानी ज़िक्रुल्लाह की शक्लें मुख्तलिफ, कुरान पाक की तिलावत है, तहज्जुद का अहतमाम है, तहज्जुद का अहतमाम है और अज़कार हैं सुबह और शाम के, और दूसरी तमाम शक्लें जो हैं अल्लाह तआला के साथ कल्ब के ताल्लुक को मजबूत करने की, वो तमाम अहले इल्म को इख्तियार करने की ज़रूरत है। दो सिलसिले हैं, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सिलसिला आप की तन्हाइयों में आप इबादत करके अल्लाह तआला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत फरमाते थे। दूसरा अल्लाह तआला की तरफ से जो काम आपके हवाले किया गया था मखलूक में आकर के अल्लाह के उन पैगामात को पहुंचाने का अहतमाम करते थे। तो ये दो सिलसिले हैं, बंदे का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ और बंदे का ताल्लुक दूसरे बंदों के साथ अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए। अब हमारा सिलसिला क्या है, हम ये तदरीस वगैरह के सिलसिले जारी रखे हुए हैं और दीन की ये सारी चीज़ें दूसरे बंदों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस गोया बंदों के साथ जो ताल्लुक़ है और दीन को वहाँ पहुँचाने का सिलसिला है, उसकी जो रूह है वो दरअसल अल्लाह तआला के साथ का ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही इसके अंदर यानी मखलूक के साथ आप जो ये सिलसिला तबलीग अहकाम का करेंगे उसमें जान पड़ेगी, और जितना उसमें कमी आएगी ये खाली ज़ाहरी शक्ल सूरत रह जाएगी। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक हमारे हजरत मुफ्ती साहब उनके साथ कई जगहों पर खुद जमात में गए हैं, मेवात के सफ़रों में गए हैं। हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब भी कभी किसी इज्तिमा में या किसी और इस तरह की निस्बत से मेवात जाना होता है तो वहाँ से आने के बाद मैं या तो रायपुर या सहारनपुर खानकाह में 3 रोज़ के लिए जाता हूँ, और अगर उसका मौका ना हो तो निज़ामुद्दीन के अंदर 3 रोज़ का एहतिकाफ़ करता हूँ, ताकि लोगों के साथ मेलजोल की वजह से कल्ब के अंदर जो गुबार आया है, जो कुदूरतें आई हैं वो दूर हों। इंसानों के साथ आदमी जब मिलता है ना तो गोया हर आदमी का दिल दूसरे के दिल से कुछ ना कुछ हासिल करता है। तो अब आवाम के साथ आप दीन की मेहनत की नस्बत से जब लगेंगे तो आवाम जहाँ आप अपनी बात पहुँचाएँगे वहाँ आवाम के कुलूब का असर भी आपके कल्ब पर पड़ेगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, छुरी है, छुरी काटने का काम करती है। आप छुरी से आप सब्ज़ी काटेंगे काटती रहेगी, लेकिन जहाँ छुरी उस सब्ज़ी को काटती है वहाँ वो सब्ज़ी भी छुरी की धार पर क्या करती है, असर करती है। कुछ मुद्दत तक 1-2 रोज़ तक काटने के नतीजे में फिर छुरी की धार की वो तेज़ी जो पहले थी वो बाकी, उसको फिर तेज़ करना पड़ता है। अगर तेज़ नहीं करेंगे तो चंद दिनों के बाद कैफियत ये होगी कि वो छुरी अपना काम करना छोड़ देगी। या आजकल की इस्तिलाह में गोया आप ये मोबाइल इस्तेमाल करते हैं दिन में, तो अब रात में उस मोबाइल को क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। अगर चार्ज नहीं करेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। यही हाल है लोगों के अंदर हम दीन का काम करते हैं, लोगों के कुलूब का असर काम करने वाले के कल्ब पर आता है कुदरतों की शक्ल में। उनको दूर करने के लिए रात की तन्हाइयों में अल्लाह तबरक तआला के साथ ताल्लुक कायम करना पड़ेगा, अल्लाह की इबादत में मशगूल होना पड़ेगा। गोया वहाँ से लो पर यहाँ पर पहुँचाओ, जब तक कि वो नहीं होगा यहाँ तक इस काम के अंदर जान पड़ेगी नहीं। यही असल बुनियाद है दीन के कामों की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करें और आपके बाद हजरात सहाबा और असलाफ़ किराम की ज़िंदगियों का मुताला करें। दीन में वो अल्लाह की मखलूक के अंदर अल्लाह के दीन को पहुँचाने का काम करते थे, रात में अल्लाह के सामने रो रो करके अल्लाह से वह अपने ताल्लुक को मजबूत करने का काम करते थे। रोहबानुन बिल्लैल व सुबुरसानुन बिन्नहार, ये उनकी खसूसियत थी। आज हम लोगों के अंदर तो काम करते हैं लेकिन रातों में अल्लाह तबरक तआला के साथ हमें जो ताल्लुक कायम करना चाहिए वो करते नहीं। हजरत माना दमिश्क में एक इदारा था दार इब्ने कसीर, जो बड़ी बड़ी शख्सियतों की सवानह को शाया करता था। 1997 में उसने मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने जो अब्दुल माजिद घोरी ने अरबी ज़बान में लिखी है 450 सफ़ात की, उसको शाये किया। उसका जो मुकदमा है वो दमिश्क यूनिवर्सिटी के जो शोबे दीनियात के सरबराह थे डॉक्टर सईदुल हक, उन्होंने उसको लिखा है वो मुकदमा उसका उस सवाने का। उसमें उन्होंने लिखा है कि सन 1956 में मौलाना अली मियां को जो है हुकूमत शाम ने दावत दी थी दमिश्क यूनिवर्सिटी के अंदर रिजालुल फिक्र व दावा के उनवान पर जो है मकालात पेश करने के लिए, और वह अल उस्तादुज़ ज़ाहिद विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से। चुनांचे वो तशरीफ लाए, क्योंकि हुकूमत की दावत पर गए थे, हुकूमत ने आपके क़याम के लिए जो है 5 स्टार होटल के अंदर इंतज़ाम किया। मौलाना ने कहा मैं तो एक मौलवी आदमी हूँ, दरवेश हूँ, मुझे 5 स्टार होटल में जो है सुकून नहीं मिलेगा, मस्जिद का कोई कमरा हो मुझे दे दिया जाए। चुनांचे वहाँ अपने क़याम किया और मौलाना ने वहाँ उस क़याम के ज़माने में इस उनवान पर जो मकालात पेश किए, तो वो डॉक्टर सईद अलग लिखते हैं उस ज़माने में शाम के जो बड़े बड़े उलमा थे वो हॉल में जो जहाँ मकाला दिया जाता था पहले से आकर बैठ जाते थे बड़े बड़े ऊँचे उलमा। हालांकि मौलाना अली मियां की उम्र उस वक्त तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो डॉक्टर सईद अल हक कहते हैं कि दरअसल इनके इन मकालात की तासीर में असल जो तासीर थी वो उनके रातों का अल्लाह तबरक तआला के साथ जो क़याम था और ताल्लुक था उसकी नस्बत पर। और फिर उसमें उन्होंने एक वाक़ा बयान किया कि वहीं दमिश्क के अंदर एक बड़े आलिम थे शेख अली दकर, वो एक मस्जिद के अंदर फजर की नमाज के बाद दर्स देते थे, और उनके दर्स का हाल ये था कि वो बहुत सादा दर्स होता था लेकिन उस दर्स में हाजिरी देने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मस्जिद छोटी थी, भर जाती थी, लोग सड़कों के ऊपर चटाइयाँ बिछा कर बैठते थे, आवाज़ भी बाहर नहीं पहुँचती थी, फिर भी दर्स की तासीर का आलम यह था कि लोगों की आँखों से आंसू बहते रहते थे और एक अजीब कैफियत होती थी। उनके एक शागिर्द ने एक मरतबा कहा, हजरत हम भी दर्स देते हैं लेकिन हमें हमारे दर्स में वो असर नज़र नहीं आता जो आपके दर्स के अंदर हम देख रहे हैं। तो उन शेख ने जवाब में कहा, बेटा तुम्हारी तरबियत के लिए कहता हूँ, मैं रात को तहज्जुद की नमाज में रोज़ाना 10 पारे इसलिए पढ़ता हूँ कि अल्लाह तबरक तआला मेरे इस दर्स से अपने बंदों को फ़ायदा पहुँचाए। उसका यह असर है जो तुम देख रहे हो, खाली बड़े बड़े इल्मी निकात। वो शागिर्द ने यही कहा, हम बड़े ऊंचे निकात बयान करते हैं अपने दर्स के अंदर तो भी उसमें वो असर नहीं का, खाली इल्मी निकात से असर नहीं आने का, असर तो असल में दिल से आएगा और उसके लिए मैं ये एहतमाम करता हूँ। तो हकीकत तो ये है कि जितना अल्लाह के साथ ताल्लुक़ होगा। हजरत मौलाना अली मियां ने एक वाक़ा और बयान किया है, हैदराबाद के अंदर एक बुज़ुर्ग थे, एक मरतबा उनके घुटनों में दर्द था, मजलिस थी और मजलिस के अंदर उनका खादिम वो घुटनों के दर्द के लिए दवा मल रहा था, और देखा कि लोगों में कुछ जो है चेमी गोयाँ काना फूसी हो रही है और एक शोर सा, जैसे मजलिस के अंदर कानाफूसी होती है तो शोर होता है, तो वो खादिम देख रहा है कि हजरत शेख की मजलिस में कभी ऐसी कैफियत नज़र नहीं है। आज पहला मौका था कि वो देख रहा था कि लोग इस तरह आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उधर देख रहा है, इधर देख रहा है। उसके तो शेख ने यूँ इशारा किया घुटने की तरफ, वो यूँ समझा कि यहाँ दर्द है, वहाँ और ज़्यादा दवा मिलने लगा। फिर वो कैफियत तो वो जो मजलिस के अंदर जो शोर थी मामूली थी कैफियत वो ख़त्म नहीं हुई। फिर वो देख रहा है तो शेख ने कहा आज रात को घुटने के दर्द की वजह से मेरा रात का जो मामूल है वो अज़कार और तिलावत और नमाज का वो मैं अदा नहीं कर सका, उसका ये असर है जो तुम मजलिस के अंदर देख रहे हो। हज़रत मौलाना अली मियां ने एक शेर भी उस पर पढ़ा, रहम कर कौम की हालत पर ए ज़िक्र खुदा, रहम कर कौम की हालत पर ए ज़िक्र खुदा, ये बेअदब हो गई है महफिल तेरे उठ जाने से। आज अवाम के अंदर उलमा का जो अदब बाकी नहीं रहा उसकी बड़ी वजह यही है कि अल्लाह तबरक तआला के साथ जो ताल्लुक, जो निस्बत, जो उसकी तरफ हमें रग़बत होनी चाहिए उसमें कमी आ गई, उसी का असर है जो हम माशरे के अंदर देख रहे हैं।
हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह मुज़म्मिल की तफसीर में लिखा है, जो लोग इस्लाहे खल्क का काम करते हैं और तालीम और तबलीग के सिलसिले से जुड़े हुए हैं उनके दीन की मशगूली तो ये हो और रातों को वो अल्लाह ताला के लिए ख़ास कर दें, रातों को अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें। ये सूरह मुज़म्मिल हमको यही दर्स देती है, तभी वह हमारी दीन की ये मसरूफियात कारामद हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई है, बड़ी तरगीब दी है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दावुस्सालिहीन क़ब्लकुम व मक़रबतुन लकुम इला रब्बिकुम व मग़फ़रतुन लिस्सय्यिआत व मनहातुन अनिल इस्म व मतरदतुन लिद्दाई अनिल जसद, कि तुम रात के क़याम यानि तहज्जुद को लाजिम पकड़ लो इसलिए कि तुमसे पहले नेक लोगों का ये सेवा और तरीक़ा रहा। हम भी अगर सालिहीन की जमात में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि क़ियामुल लैल का अहतमाम करें। और आगे मक़रबतुल लकुम इला रब्बिकुम, तुम्हारे लिए अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया, व मग़फ़रतुन लिस्सय्यिआत और गुनाहों का कफ़ारा, वो मनहातुन इसमें पर अल्लाह की नाफरमानी से आदमी को बचाने वाला, और मतरदतुन लिद्दान जसद और जिस्म में से बदन में से बीमारी को भगाने वाला। वह ये फ़ायदा भी है, ये ज़रूर अहले इल्म के तबके को इसका अहतमाम करना चाहिए। आप सब हजरात से मैं एक वादा लेना चाहता हूँ कि तय कर लें कि इंशाल्लाह आपके रातों को तहज्जुद का हम अपनी हैसियत के मुताबिक अहतमाम करेंगे। हर एक इसका अहतमाम करे उसकी बड़ी बरकत है और उससे आपके ये दीनी कामों में इंशाल्लाह चार चांद लग जाएंगे।
सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आली सैयदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअददि मा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية،
اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.